नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। रूस ने G20 समूह के आगामी शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भागीदारी की पुष्टि करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में रूस को ऊर्जा संसाधनों एवं निर्यात उत्पादों के एक विश्वसनीय एवं आश्वस्त आपूर्तिकर्ता का दर्जा पुख्ता किए जाने की मांग रखी जाएगी। अगले सप्ताह नई दिल्ली में G20 देशों का शिखर सम्मेलन होने वाला है। इसमें रूस का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बजाय लावरोव करेंगे। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग में मारिया जखारोवा ने कहा कि इस सम्मेलन में रूस को ऊर्जा संसाधनों एवं निर्यात उत्पादों के एक विश्वसनीय एवं आश्वस्त आपूर्तिकर्ता के दर्जे को पुख्ता किए जाने की मांग प्रमुखता से रखी जाएगी। पिछले साल फरवरी में यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने के बाद रूस के खिलाफ अमेरिका एवं यूरोपीय देशों ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में रूस अपनी आर्थिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए भारत समेत कई देशों के लिए ऊर्जा आयात का एक भरोसेमंद देश बनकर उभरा है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जखारोवा ने कहा, रूसी प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर जोर देगा कि दुनिया में किसी भी दबाव, बदलाव, अनुचित प्रतिबंधों के बावजूद रूस हमेशा विशेष रूप से ऊर्जा संसाधनों का एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता रहा है। लावरोव G20 सम्मेलन से इतर होने वाली द्विपक्षीय बैठकों में अनाज समझौते के मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने वैकल्पिक निवेश सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। समिति वैकल्पिक निवेश कोष के विकास से जुड़े मुद्दों पर नियामक को परामर्श देती है। सेबी ने अद्यतन सूचना में कहा कि समिति में अब 25 सदस्य होंगे। सेबी ने इस समिति का गठन मार्च 2015 में किया था। पिछले साल फरवरी में समिति में बदलाव कर इसके सदस्यों की संख्या 20 कर दी गई थी। इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की अध्यक्षता वाली समिति अब तक AFI उद्योग पर 3 रिपोर्ट दे चुकी है। नारायण मूर्ति के अलावा समिति में सेबी, वित्त मंत्रालय, AIF से जुड़ी इकाइयों और उद्योग संगठनों के सदस्य शामिल हैं। समिति को वैकल्पिक निवेश उद्योग के विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं तथा क्षेत्र से जुड़े अन्य मुद्दों के साथ देश में स्टार्टअप परिवेश के विकास के बारे में सुझाव देने की जिम्मेदारी मिली हुई है। इसके अलावा समिति को वैकल्पिक निवेश उद्योग के विकास के लिए अन्य नियामकों के साथ उठाए जाने वाले किसी भी मुद्दे पर सेबी को सलाह देने का काम सौंपा गया है। वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता कंपनी अशोक लेलैंड ने अपने ग्राहकों को वाहन कर्ज की सुविधा प्रदान करने के लिए CAB बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। अशोक लेलैंड ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि दोनों कंपनियों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे उन्हें ग्राहकों को कर्ज की सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी एवं निदेशक गोपाल महादेवन ने कहा कि CSB बैंक के साथ साझेदारी से ग्राहकों को उन वित्तीय उत्पादों का लाभ मिलेगा जिन्हें विशेष रूप से बाधा रहित अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय 2024 में पायलटों के लिए संभवतः रेडियो संचार कौशल परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। सूत्रों ने ये जानकारी दी। इसे रेडियो टेलीफोनी परीक्षा भी कहा जाता है। विमानन विशेषज्ञों और पायलटों के निकायों द्वारा विशेषज्ञता की कमी तथा कदाचार का आरोप लगाने के बाद संचार मंत्रालय ने 1 मई 2023 को 2024 से आधिकारिक तौर पर परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी DGCA को सौंपी थी। हालांकि अब विमानन नियामक ने परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के पद को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नागर विमानन मंत्रालय के एक सूत्र ने PTI भाषा से कहा, हम उम्मीद कर रहे थे कि पद सृजन के बाद नियामक विज्ञापन जारी करेगा और नियुक्तियां शुरू करेगा। आश्चर्य की बात यह है कि इन पदों को अन्य विभागों को वापस सौंपना शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह DGCA को ही पता होगी। सूत्रों में से एक ने कहा, उदाहरण के लिए निदेशक के 2 पद DGCA को सौंप दिए गए हैं। इसी तरह उप निदेशक के 18 पद मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नागपुर आदि में DGCA के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंपे गए हैं। DGCA के महानिदेशक विक्रम देवदत्त से इस संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सूत्रों ने कहा कि DGCA में उत्पन्न मौजूदा स्थिति को देखते हुए कुछ साल तक परीक्षा आयोजित करा पाना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वायरलेस योजना एवं समन्वय परीक्षा आयोजित कराता रहेगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।